SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आज रविवार को गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ C-295 मध्यम लिफ्ट सामरिक परिवहन विमान के फाइनल असेंबली लाइन संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निजी क्षेत्र में भारत का यह पहला सैन्य परिवहन विमान उत्पादन संयंत्र टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच साझेदारी से बना है। निजी क्षेत्र में इस पहले मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना के एवरो बेड़े को बदलने के लिए 56 C-295 विमान हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जर्मनी के बीच व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने के साथ साथ स्किल्ड भारतीय युवाओं को दिए जा रहे वीजा की संख्या बढ़ाने के लिए जर्मनी की सराहना की है। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ प्रेस को संबोधित करते हुए यह बात कही।
भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल लेबर स्ट्रेटेजी का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा टैलेंट पूल को जर्मनी के विकास में योगदान देने के बेहतर अवसर मिलेंगे। भारतीय टैलेंट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में इस विश्वास के लिए मैं चांसलर शोल्ज का अभिनंदन करता हूँ।
चांसलर शॉल्स ने जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की दुनिया में सबसे तेज गति से काम करने पर भारत की सराहना की।
टुडे वी आर मीटिंग इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद द मोस्ट रैपिडली एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑफ एनी मेजर इकोनॉमी A country at the heart of the world's most dynamic region, the Asia-Pacific. In a nutshell, the Asia-Pacific conference has come to the right place at the right time.
साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर भारत द्वारा विश्व शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में लिखते हुए कहा, मैं यूक्रेन में स्थायी न्यायपूर्ण शांति की वकालत करने तथा सभी पक्षों के साथ अपने विश्वसनीय संबंधों का उपयोग कर योगदान देने के लिए भारत का समर्थन करता हूं। साझेदारों के रूप में भू राजनीतिक मुद्दों सहित कई विषयों पर सीधे बात करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच हाल ही में हुए सीमा समझौते को लेकर भारतीय मीडिया बेशक ताल ठोक रहा हो, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मुद्दे को लेकर काफी सतर्क हैं। रविवार को मुंबई में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीमा से सैनिकों की वापसी पहला कदम है। दोनों देशों के बीच तनाव तभी कम होगा जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी तनाव कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
ये तो डिसएंगेजमेंट का विषय है, डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग का विषय, जिसका मतलब था कि हमारी सेनाएं जो है एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गई थी और इसके इसमें अपना इसका खतरा होता है, तो लोग जो है वो अपने कैंप में वापस गए हैं और जहां पहले पेट्रोलिंग की जो स्थिति जो थी देवसांग और देवचौक में, वो अब वही स्थिति हमारी अपेक्षा है कि वो वापस आए। इसके अलावा ये अगला स्तर जो है वो डी एस्केलेशन का मतलब है कि दोनों सेनाएं काफी बड़ी मात्रा में हथियार के साथ उस क्षेत्र में आए, तो वो हम उसको कम नहीं करेंगे जब तक हमें विश्वास नहीं है कि उनके यहाँ वहाँ उनके यहाँ भी वो ऐसी डिसीजन। तो ये मिलजुल के बात करने से ही होगा, इस पे भी हमें सहमति बनानी होगी।
उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में वायु प्रदूषण फिर तेजी से फैलने लगा है। रविवार के दिन उत्तरी भारत के 11 शहरों में PM 2.5 का स्तर 300 से अधिक पाया गया, जिसे खतरनाक माना जाता है। राजस्थान के भिवाड़ी शहर में तो प्रदूषण 600 का स्तर भी पार कर गया। दिल्ली के कई इलाकों में PM 2.5 का स्तर 400 से ज़्यादा मापा गया। उत्तर भारत के राज्यों हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा धान कटाई के बाद पराली जलाने से दिवाली के बाद प्रदूषण के और अधिक बढ़ने की आशंका है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों से पराली जलाने पर अंकुश लगाने को कहा है। प्रदूषण की हालत देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के जलाने और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इनमें तथाकथित ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं। प्रदूषण के अलावा दिल्ली वासियों को मच्छरों के प्रकोप की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अभी तक दिल्ली में डेंगू के 3,200 से अधिक मामले आ चुके हैं। हालांकि 2023 में दिल्ली में डेंगू के कुल 4,404 मामले आए थे, लेकिन इस बार यह संख्या बढ़ने के आसार हैं। डेंगू के अलावा मलेरिया के मामले भी बढ़ने लगे हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और भाजपा शासित नगर निगम की आपसी खींचतान के चलते गंदगी से पैदा होने वाली इन बीमारियों पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है। कर्नाटक राज्य में डेंगू के मामलों की संख्या 25,000 पार हो जाने के बाद सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली के चलते गिरावट लगातार जारी है, जिसके कारण मध्यम आय वर्ग के भारतीय खुदरा निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर की दिवाली की चमक फीकी पड़ रही है। चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में स्टिमुलस पैकेज घोषित किए जाने के बाद विदेशी फंड बेहतर अवसरों की तलाश में भारत से पैसा निकालकर चीन में निवेश कर रहे हैं। अकेले अक्टूबर महीने में ही अभी तक विदेशी फंड्स भारतीय शेयर बाजार में 95,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली कर चुके हैं, जिसकी वजह से पिछले एक महीने में निफ्टी सूचकांक में तकरीबन 2000 अंकों और सेंसेक्स में करीब 6000 अंकों की गिरावट हो चुकी है। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देख शेयर बाजार में मंदी जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि खुदरा निवेशकों को दिवाली पर बाजार के कुछ बेहतर होने की आशा है। भारतीय बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधवी बुच पर अपने पद का दुरुपयोग करने के कई आरोप लगाने के बाद प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस ने एक अनोखे अंदाज में मोर्चा खोला है। इसकी कमान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वयं अपने हाथ में ली है। कांग्रेस का कहना है कि चूंकि श्रीमती बुच पर गंभीर आरोप होने के बावजूद ना तो मोदी सरकार उन्हें पद से हटा रही है और ना ही भारतीय मीडिया इसे गंभीरता से ले रहा है, इसलिए पार्टी स्वयं ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर उनका पर्दाफाश कर सच्चाई सामने लाने जा रही है, जिससे भारत के करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स बड़े नुकसान से बच सकें। इसके तहत कांग्रेस ने शनिवार को बुच बचाओ सिंडिकेट नाम से YouTube पर एक श्रृंखला चालू की।
Show them actually what's going on. 10 crore stock people who invest in stock market, sir. Their money and their future is involved. That's at stake. And they're all going to get hurt. Now we tried to find out why is Madhavi helping Adani. So if she is so compromised, like all these papers that you see here are different cases of her, which show that how she is so thoroughly compromised. कोई हैरानी नहीं होगी जब आप ये कागज देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के वहां सेबी ने कुछ नहीं बताया अदानी जी पर और लगभग क्लीन चिट ही दी।
वी गॉट टू शो द पीपल मोर ग्रैन्युलैरिटी अबाउट दैट आइडिया कि भैया ये भी है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये सब बिना मतलब प्रधानमंत्री जी के या बिना सरकार के किया नहीं जा सकता।
आपको बता दें कि हाल ही में श्रीमती बुच ने कुछ जरूरी काम का हवाला देते हुए संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आने से इनकार कर दिया था। कमेटी ने उन्हें हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अडानी समूह से संबंधित खुलासों पर सवाल करने के लिए तलब किया था। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।